ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس دنیا کے سب سے بہترین سپر کمپیوٹر کا ایکسس ہو، مطلب ایک ایسی مشین جو پلک جھپکتے ہی آپ کے ہر کمانڈ کو پورا کر دے، جس کی کوئی سیما ہی نہ ہو.
اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں.
بالکل، لیکن اس کے باوجود آپ ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے فون پر کام کرنے کی ضد کر رہے ہوں. ایک ایسا فون جس کی اسکرین بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی اور جو بار بار ہینگ ہو جاتا ہے.
ہاں، سننے میں کافی عجیب لگتا ہے نا.
بہت عجیب، لیکن آج کی ہماری اس گہن چرچا میں ہم کچھ ایسا ہی سمجھنے والے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ اے ڈیسلوا نے عبرانیوں یا کہہ لیں ہبروز کے 8ویں ادھیائے کا جو وشلیشن کیا ہے، وہ ہمیں ٹھیک اسی دشا میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے.
بالکل، اور یہ بہت ہی دلچسپ وشے ہے.
ہاں، تو آج ہم یشو کے ایک بہت ہی الگ روپ پر بات کریں گے، ان کے سورگی یاجک پد اور ایک ایسی نئی واچا یا نئے انوبند پر جس نے اتہاس کا رخ ہی بدل دیا.
اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہزاروں سال پرانے گرنتھوں میں جس سورگی تمبو کی بات کی گئی ہے، وہ آج کی ہماری اس بھوتک وادی دنیا میں کیا معنی رکھتا ہے.
صحیح کہا.
اگر اسے سیدھے شبدوں میں کہوں تو یہ پورا ادھیائے ایشوریہ ویوستھا کے ایک بہت بڑے برہمانڈیہ سسٹم اپ گریڈ کی کہانی ہے.
میں اسے ایک بھاری سسٹم اپ گریڈ کی طرح ہی دیکھتا ہوں.
یہ فون اپ گریڈ والی بات اس استھتی پر بالکل سٹیک بیٹھتی ہے.
واہ.
کیونکہ عبرانیوں کے جو مول پاٹھک تھے، ان کے سامنے ٹھیک یہی دویدھا تھی. پرانی ویوستھا میں پھنسے رہنے کی دویدھا.
بالکل، لیکن دیکھیے یہاں ہمیں اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا. یہ کوئی معمولی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں تھا جہاں آپ نے بس کچھ نیم بدل دیے یا کچھ نئے کرم کانڈ جوڑ دیے.
مطلب یہ صرف ایک پیچ یا چھوٹا فکس نہیں تھا.
ایک دم صحیح. ڈاکٹر ڈی سلوا بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ مانو جاتی کے ایشور تک پہنچنے کے طریقے میں ایک بہت ہی مولک بدلاؤ تھا.
ایک کاسمک شفٹ کہہ سکتے ہیں اسے. ہاں، کاسمک شفٹ. اسے آپ پوری واستوکتا کے کیندر کا ہی بدل جانا کہہ سکتے ہیں. پرانی ویوستھا، مطلب جو موسا کی ویوستھا تھی، وہ ایک شروعات تھی، ایک طرح کی ٹریننگ تھی. لیکن یہ نہیں ویوستھا اس انتم لکش تک پہنچنے کا سادھن ہے.
اچھا، تو اگر ہم اس سسٹم اپ گریڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کی لوکیشن یا کہہ لیں اس کے ہیڈ کوارٹر کی بات کرنی چاہیے.
بالکل، کیونکہ اگر سسٹم نیا ہے تو وہ کہیں سے تو آپریٹ ہو ہی رہا ہوگا.
ہاں، اور یہاں بات پرتھوی کے کسی مندر کی نہیں ہو رہی بلکہ سیدھے سورگ کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر ڈیسلوا کے وشلیشن میں عبرانیوں 8 کا سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ یشو اب ایک مہان مہایاجک یا ہائی پریسٹ کے روپ میں سورگ میں بیٹھے ہیں،
ایشور کے سنگھاسن کے داہنے ہاتھ.
بالکل، جس کا ذکر بھجن سہیتا 110 میں بھی ملتا ہے. مطلب وہ اس سچے تمبو یا اصلی پوتر استھان میں سیوا کرتے ہیں جسے کسی انسان نے اینٹ پتھروں سے نہیں بلکہ سوئم ایشور نے بنایا ہے.
اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے.
لیکن یہاں مجھے ایک مطلب ایک بہت بڑی قانونی اڑچن دکھائی دیتی ہے. اگر ہم پرانے نیموں کو دیکھیں تو یشو پرتھوی پر تو یاجک بن ہی نہیں سکتے تھے نا.
ہاں، یہ ایک بہت ہی شاندار بندو ہے اور اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں.
کیسے؟
دیکھیے، اگر ہم تورا کے نیموں کو پڑھیں، مطلب موسا کی ویوستھا کو، تو یاجک یا پریسٹ ہونا ایک طرح کا پریوارک پیشہ تھا.
اچھا، ایک ہی پریوار کے لوگ.
بالکل، یہ ادھیکار وشیش روپ سے کیول لیوی گوتر کے لوگوں کو ہی دیا گیا تھا. کوئی بھی ویکتی، چاہے وہ کتنا بھی پوتر یا گیانی کیوں نہ ہو، اگر وہ لیوی کے پریوار سے نہیں ہے تو وہ مندر میں بلی چڑھانے یاجک کا کام نہیں کر سکتا تھا.
اور یشو تو؟
ہاں، سمسیا یہی تھی کہ یشو یہودا گوتر سے تھے، جو کہ راجاؤں کا گوتر مانا جاتا تھا، یاجکوں کا نہیں.
ارے واہ، مطلب قانونی روپ سے پرتھوی پر موجود یروشلم کے مندر میں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی.
ایک دم صحیح، تکنیکی اور قانونی روپ سے وہ وہاں یاجک نہیں ہو سکتے تھے.
یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے قانون کی بہت گہلی پڑھائی کی ہو. وہ دنیا کا سب سے اچھا وکیل ہو، لیکن اس کے پاس کسی راجیہ کی ستھانی عدالت میں پریکٹس کرنے کا لائسنس ہی نہ ہو.
ہاں، وہاں کا بار ایسوسیشن اسے اندر ہی نہ گھسنے دے.
بالکل، لیکن یہاں کہانی میں جو ٹوسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یشو کو اس ستھانی یا نچلی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کیونکہ وہ سیدھے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں.
ہاں، سیدھے سورگ میں. ان کے پاس اس جگہ کا ادھیکار ہے جہاں سے سارے نیم بنتے ہیں.
اور یہی وہ ماسٹر سٹروک ہے جو عبرانیوں کا لیکھک یہاں کھیل رہا ہے. وہ اپنے پاٹھکوں کو سمجھاتا ہے کہ پرتھوی کا جو مندر ہے وہ اپنے آپ میں کوئی انتم ستیہ نہیں ہے.
مطلب وہ اصلی چیز نہیں ہے.
نہیں ہے. پہلی صدی کا یہودی سماج اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ پرتھوی کا تمبو یا مندر کیول سورگیہ مندر کی ایک چھوٹی سی نقل ہے، یا کہہ لیں اس کی پرچھائی ہے.
डॉक्टर डिसिल्वा ने यहाँ किसी आयत का हवाला भी दिया है ना?
हाँ, लेखक यहाँ निर्गमन मतलब एक्सोडस 25 के 40वें पद का बहुत ही सटीक हवाला देता है। जब मूसा सिनाई पहाड़ पर थे तो ईश्वर ने उनसे स्पष्ट कहा था कि वो तंबू को ठीक उसी मॉडल के अनुसार बनाए जो उसे पहाड़ पर दिखाया गया था।
अच्छा, मतलब ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था।
बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये था कि असली वास्तविक मॉडल तो पहले से ही स्वर्ग में मौजूद था। मूसा ने तो बस उसका एक प्रोटोटाइप पृथ्वी पर बनाया था।
एक मिनट रुकिए, जब आप कहती हैं कि असली मॉडल स्वर्ग में था और पृथ्वी पर केवल उसकी परछाई है, तो ये सुनना बहुत हद तक ग्रीक फिलॉसफी जैसा लगता है।
हाँ, प्लेटो की तरह।
बिल्कुल प्लेटो है, ऐसा लगता है जैसे हम प्लेटो की बात कर रहे हों, जिन्होंने कहा था कि हमारी ये भौतिक दुनिया केवल विचारों की एक असली दुनिया की परछाई मात्र है। तो क्या इब्रानियों का लेखक प्लेटो के दर्शन से प्रभावित होकर ये सब लिख रहा था?
अन्यों का लेखक प्लेटो की दार्शनिक दुनिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है।
अच्छा, तो फिर वो किस आधार पर बात कर रहा है?
वह प्राचीन यहूदी ब्रह्मांड विज्ञान जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं उसके आधार पर अपनी बात रख रहा है। अगर हम उस समय के प्राचीन यहूदी ग्रंथों को देखें, जैसे कि वन हेनोक या सभोपदेशक के ज्ञान,
जो उस समय काफी प्रचलित थे।
हाँ, ये वो ग्रंथ थे जिनका उस समय के यहूदी समाज पर गहरा प्रभाव था। इन ग्रंथों में पहले से ही ये अवधारणा मौजूद थी कि स्वर्ग में ईश्वर का एक वास्तविक भव्य निवास स्थान है जहाँ फरिश्ते आराधना करते हैं।
मतलब ये कोई अमूर्त विचार नहीं था।
नहीं, तो लेखक अमूर्त ग्रीक विचारों की बात नहीं कर रहा है। वह इस नश्वर टूटने फूटने वाली दृश्यमान दुनिया की तुलना उस शाश्वत अदृश्य स्वर्गीय वास्तविकता से कर रहा है जो हमेशा के लिए कायम रहने वाली है।
ये समझना बहुत जरूरी है। यानी हम केवल किसी कॉन्सेप्ट या विचार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी असली जगह की बात कर रहे हैं जो अभी हमारी भौतिक नजरों से ओझल है।
बिल्कुल सही।
अब देखिए, अगर लोकेशन इतनी अपग्रेडेड है, अगर याजक पद का स्थान स्वर्ग का असली तंबू है, तो वहां काम करने का तरीका, वहां का जो अनुबंध या वाचा है, उसे भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए।
जाहिर सी बात है,
पुराने कॉन्ट्रैक्ट से तो नए सिस्टम में काम नहीं चलेगा। और यहीं से हम उस मशहूर पुरानी वाचा से नई वाचा की ओर मुड़ते हैं।
हाँ, क्योंकि यीशु एक बेहतर वाचा के मध्यस्थ है जो बेहतर वादों पर आधारित है।
और स्रोत के अनुसार परमेश्वर ने यरमियाह 31 के माध्यम से सदियों पहले ही इस नई वाचा की घोषणा कर दी थी, क्योंकि पुरानी वाचा में एक बहुत बड़ा दोष था।
और ये दोष क्या था, ये समझना इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है।
हाँ, और यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब अगर हम मानते हैं कि पहली वाचा यानी जो नियम मूसा को पहाड़ पर मिले थे वे खुद ईश्वर ने दिए थे, तो वे विफल कैसे हो गए?
एक बहुत ही जायज सवाल है।
क्या ईश्वर के बनाए उस सिस्टम में कोई डिजाइन फ्लॉ था? मतलब क्या उन्होंने कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया था?
ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि डिजाइन में कोई कमी नहीं थी।
अच्छा
जी, सिस्टम बिल्कुल सही था, कानून पवित्र और अच्छे थे। कमी उस सिस्टम को इस्तेमाल करने वालों में थी, यानी इंसानों में।
मतलब यूजर एरर था।
बिल्कुल, यूजर एरर। डॉक्टर डिसिल्वा स्पष्ट करते हैं कि दोष नियमों में नहीं बल्कि उन लोगों में था जिन्होंने मिस्र के गुलामी से आजाद होने के बाद रेगिस्तान में बार बार विद्रोह किया।
उन्होंने उस वाचा का, उस अनुबंध का पालन करने से इनकार कर दिया।
हाँ, देखिए, पुरानी वाचा बाहरी नियमों पर आधारित थी, कानून पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए थे। वे आपको ये तो बता सकते थे कि क्या गलत है,
लेकिन वे आपको उसे सही करने की आंतरिक शक्ति नहीं दे सकते थे।
बिल्कुल सही।
मतलब ये ऐसा था जैसे किसी ने सड़क पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा दिया हो। बोर्ड आपको नियम बता रहा है लेकिन वो आपकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगा सकता।
हाँ, अगर आप तेज चलाना चाहते हैं तो आप चलाएंगे।
सही कहा,
बहुत सटीक उदाहरण है। और पुरानी व्यवस्था में एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ भी था। जरा उस समय के आम इंसान की कल्पना कीजिए।
वो तो हमेशा डर में रहता होगा।
बिल्कुल, उसे बार बार जानवरों की बलि देनी पड़ती थी, मंदिर में खून धुआं और एक लगातार डर का माहौल रहता था। ईश्वर की पवित्रता इतनी प्रचंड मानी जाती थी कि पापी इंसान हमेशा डरा रहता था कि अगर वो अशुद्ध अवस्था में ईश्वर के करीब गया तो वो भस्म हो जाएगा।
मतलब वो पाप बोध, वो अपराध बोध कभी खत्म ही नहीं होता था।
कभी नहीं, हर साल महायाजक को फिर से बलि चढ़ानी पड़ती थी जो ये याद दिलाता था कि पाप अभी भी वही है।
ये सच में बहुत थका देने वाला और डरावना जीवन रहा होगा। तो फिर इस नई वाचा के बेहतर वादे क्या हैं? ये नया अपग्रेड इस पुरानी समस्या को कैसे सुलझाता है?
स्रोत के अनुसार यिर्मयाह ने 3 बहुत ही क्रांतिकारी वादों की बात की थी।
हाँ,
पहला ये कि ईश्वर के कानून अब पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि सीधे लोगों के दिमाग और दिलों पर लिखे जाएंगे।
बिल्कुल।
और दूसरा, हर कोई ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानेगा, समाज के सबसे छोटे इंसान से लेकर सबसे बड़े तक।
मतलब किसी को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु को जानो।
सही कहा। और तीसरा जो मुझे सबसे प्रभावशाली लगता है, ईश्वर लोगों के पापों को पूरी तरह माफ कर देंगे और उन्हें फिर कभी याद नहीं रखेंगे।
ये तीनों वादे मिलकर एक मतलब एक पूरी तरह से नई मानव चेतना का निर्माण करते हैं। जब कानून दिल पे लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि इंसान की इच्छाएं और ईश्वर की इच्छाएं एक हो जाती हैं।
हाँ, आप किसी डर के कारण नियम का पालन नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका स्वभाव बन चुका है।
लेकिन इन सब में, जैसा आपने कहा, तीसरी बात, पापों को याद ना रखना सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है।
बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था में पाप हमेशा ईश्वर और इंसान के बीच एक दीवार बनकर खड़ा रहता था, लेकिन नई वाचा में यीशु के बलिदान के कारण वो दीवार हमेशा के लिए ढहा दी गई है।
ईश्वर उन पापों को याद न रखने का वादा करते हैं।
हाँ, इसका सीधा सा परिणाम ये है कि अब एक साधारण इंसान बिना किसी डर के पूरे विश्वास और निडरता के साथ पवित्र ईश्वर के करीब जा सकता है। उसे अब बिचौलियों या लगातार दी जाने वाली बलियों की जरूरत नहीं है।
ये तो पूरी तरह से आजादी का संदेश है। लेकिन अगर ये नया सिस्टम इतना ही बेहतर है तो पुराने का क्या होता है? मतलब जब कुछ नया आता है तो पुराने को हटाना पड़ता है।
जाहिर है।
इब्रानियों का लेखक यहाँ एक बहुत ही तार्किक बात कहता है। वो कहता है कि जब यिर्मयाह ने सदियों पहले एक वाचा को नई कह दिया था तो उसी पल ये तय हो गया था कि पहली वाचा अब पुरानी हो चुकी है।
वो अप्रचलित हो गई है।
हाँ, और अब वो लुप्त होने की कगार पर है। जरा सोचिए, उस समय की यहूदी समाज के लिए ये दावा कितना बड़ा कल्चरल शॉक रहा होगा।
बहुत बड़ा।
यरूशलेम का वो भव्य मंदिर, वो याचकों की व्यवस्था, वो सदियों पुरानी परंपराएं जो उनके जीवन का, उनकी पहचान का केंद्र थीं, अचानक कोई उनसे कह रहा है कि अब इन सब की कोई जरूरत नहीं रही।
ये एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से गहरा मुद्दा है, और यह समझना दिलचस्प है कि आज के धर्मशास्त्र और पहली सदी के इस लेखक के नजरिए में कितना बड़ा अंतर है।
मतलब आज के समय में इस पर अलग विचार हैं।
जी, आज के समय में विशेष रूप से होलोकॉस्ट जैसी भयानक मानवीय त्रासदियों के बाद आधुनिक धर्मशास्त्र में एक नई सोच विकसित हुई है जिसे टू कवेनेंट थियोलॉजी या दो वाचा धर्मशास्त्र कहा जाता है।
हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस स्रोत सामग्री के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं।
बिल्कुल, हमारा काम बस ये बताना है कि स्रोत क्या कहता है।
तो ये विचारधारा मानती है कि यहूदियों के लिए मूसा की दी हुई पुरानी वाचा आज भी पूरी तरह से मान्य और प्रभावी है, और गैर यहूदियों के लिए यीशु की नई वाचा है, यानी दोनों रास्ते समानांतर चलते हैं।
हाँ, आधुनिक विचार यही कहता है, लेकिन डॉक्टर डिसिल्वा यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक सत्य और मूल ग्रंथ की बात करें तो इब्रानियों के लेखक का नजरिया ये बिल्कुल नहीं था।
मतलब लेखक के लिए कोई दो रास्ते नहीं थे?
बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये कोई समानांतर चलने वाली व्यवस्था नहीं थी। उसके अनुसार पुरानी वाचा अपना समय पूरा कर चुकी थी और नई वाचा ने उसे पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था।
एक ने दूसरे की जगह ले ली थी।
हाँ, वो पुरानी वाचा को केवल एक छाया मानता था जिसका काम केवल तब तक था जब तक कि असली चीज यानी यीशु ना आ जाए। लेखक इस पुरानी वाचा को उस दृश्यमान भौतिक दुनिया के साथ जोड़ता है जो धीरे धीरे पुरानी पड़ रही है, जो नष्ट होने वाली है।
ये बात उस समय के लोगों को समझाना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब वो तो उसी चीज पर भरोसा करते थे जिसे वो अपनी आंखों से देख सकते थे, मंदिर की दीवारें, बलिवेदी, याजकों के कपड़े।
बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां इस पूरे धर्मशास्त्र का व्यवहारिक और कह लें देहाती या पास्टोरल उद्देश्य सामने आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पत्र किने लिखा जा रहा था।
हाँ, उन लोगों की हालत क्या थी?
ये वो शुरुआती ईसाई थे जो शायद पिछले 5, 10 या 20 सालों से भयानक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने घर खो दिए थे, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, उनके व्यापार बंद हो गए थे।
ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था?
नहीं, ये एक लंबी थका देने वाली लड़ाई थी।
हाँ, वे पूरी तरह से टूट चुके होंगे, मतलब जब आप सालों तक समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप सोचने लगते हैं कि क्या ये सब वाकई इसके लायक है।
बिल्कुल,
उन्हें लगने लगा होगा कि जब से उन्होंने ये नया रास्ता चुना है उनका जीवन बदतर हुआ है। वे हताश होकर वापस उस पुरानी दिखाई देने वाली सुरक्षित यहूदी व्यवस्था में लौटने की सोच रहे होंगे। कम से कम वहाँ एक भव्य मंदिर तो था जिसे वे देख सकते थे।
सही कहा, वे एक तरह के स्पिरिचुअल बर्नआउट से गुजर रहे थे और इसीलिए डॉक्टर डी सिल्वा बताते हैं कि लेखक यहाँ इतने ऊंचे धर्मशास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन निराश और थके हुए लोगों को याद दिला रहा है कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो,
तुम सही रास्ते पर हो।
हाँ, तुम इतिहास के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त बिंदु पर खड़े हो। वो उनसे कह रहा है कि जरा सोचो, जिस पल का इंतजार राजा दाऊद ने किया, जिसकी भविष्यवाणी इर्मिया जैसे महान लोगों ने की,
और जिसे वे केवल दूर से एक धुंधले सपने की तरह देख पाए,
बिल्कुल वो आज तुम्हारे जीवन में हकीकत बन चुका है। तुम उस स्वर्गीय वास्तविकता का हिस्सा बन चुके हो।
ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी को दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट का VIP ऑल एक्सेस पास मिल गया हो।
अरे वाह, अच्छा उदाहरण है।
मतलब वो सीधे अपने पसंदीदा कलाकार से मिल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति केवल इस बात की शिकायत कर रहा है कि उसे स्टेडियम तक पैदल चलकर जाना पड़ रहा है और उसके पैरों में दर्द है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही,
लेखक उन्हें झकझोर कर कह रहा है कि अपनी इन दुनियावी तकलीफों के कारण उस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय विशेषाधिकार को मत भूलो जो तुम्हें मिल चुका है। तुम सीधे ईश्वर के दरबार में खड़े हो।
ये एक बहुत ही सटीक उपवा है, और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें 2000 साल बाद, तो हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
आज के लिए इसका क्या मतलब है?
आज हम अक्सर ईश्वर की आराधना को, उनके करीब जाने को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम इसे रविवार का एक उबाऊ काम मान लेते हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से एक रस्म की तरह निभाते हैं।
हाँ, एक चेकलिस्ट की तरह।
बिल्कुल, लेकिन लेखक हमें याद दिलाता है कि प्राचीन समय में ईश्वर के करीब जाने का विचार ही डरावना और अकल्पनीय था। आज अगर हमें ये आज़ादी मिली है तो ये एक आश्चर्यजनक विशेषाधिकार है जिसे कभी मामूली नहीं समझना चाहिए।
और मुझे लगता है कि ये संदेश आज की भौतिकवादी दुनिया पर भी उतनी ही जोरदार चोट करता है।
कैसे?
मतलब आज हम भी तो उसी चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें दिखती है, जिसे हम छू सकते हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ियाँ, हमारे घर, हमारी सामाजिक स्थिति।
हाँ, हम भौतिक चीजों को अपनी सुरक्षा मान लेते हैं।
बिल्कुल, हम इन भौतिक चीजों को अपनी सुरक्षा का आधार मान लेते हैं। लेकिन ये पाठ हमें सिखाता है कि जो कुछ भी भौतिक है, जो दिखाई देता है, वो अस्थिर है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा।
और जो अनदेखा है?
हाँ, जो अनदेखा है, यानी यीशु के वादे और वो स्वर्गीय वास्तविकता, वही जीवन का सबसे ठोस और सुरक्षित आधार है।
और यही वो सिंगलनेस ऑफ हार्ट या मन की एकाग्रता है जिसकी बात लेखक कर रहा है। जब हम अपनी सुरक्षा और अपनी खुशी बाहरी चीजों में ढूंढना बंद कर देते हैं और अपना पूरा जीवन ईश्वर के उन अटूट वादों पर केंद्रित करते हैं, तो भौतिक दुनिया के इनाम और नुकसान दोनों ही हमारे लिए बेमानी हो जाते हैं।
सही कहा।
जब हमारा दिल बटा हुआ नहीं होता, तब हम जीवन की किसी भी मुश्किल, किसी भी उत्पीड़न का सामना पूरी अखंडता और एक गहरे आंतरिक आनंद के साथ कर सकते हैं। यही नई वाचा की असली शक्ति है।
तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि यीशु केवल एक शिक्षक नहीं है, बल्कि वह स्वर्ग के असली तंबू में हमारे महायाजक हैं।
बिल्कुल,
वो एक ऐसी नई वाचा लेकर आए हैं जिसने पत्थरों पर लिखे उन बाहरी नियमों की जगह ले ली है जो हमें बदल नहीं सकते थे। अब नियम सीधे हमारे दिलों पर हैं।
हाँ, एक ब्रह्मांडीय अपग्रेड।
सही कहा, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय अपग्रेड है जिसने पापों की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है और हमें बिना किसी डर के ईश्वर के पास जाने की आज़ादी दी है। जो पुराना था, जो एक छाया था, वो जा चुका है और असली शाश्वत हकीकत आ चुकी है।
और इस पूरी गहन चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो आगे सोचने पर मजबूर करेगा।
बताइए।
हमने ये पूरी चर्चा इस बात पर की कि पुरानी वाचा में ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक भौतिक मंदिर की जरूरत होती थी, और नई वाचा में वो मंदिर स्वर्ग में है। लेकिन यर्मिया की भविष्यवाणी का मूल ये था कि ईश्वर अपने कानून सीधे हमारे दिलों और दिमागों में लिखते हैं।
हाँ, नियमों का हमारे भीतर आ जाना।
तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सच्चा स्वर्गीय तंबू, वो असली मंदिर जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो केवल आसमान में कहीं दूर स्थित कोई जगह नहीं है?
अच्छा, तो फिर वो कहाँ है?
अगर नई वाचा के तहत ईश्वर सीधे हमारे दिलों में काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर उस तंबू का निर्माण स्वयं हमारे भीतर हमारी अपनी चेतना में कर रहे हों?
अरे वाह,
क्या हम इंसानी वो जगह बन रहे हैं जहां ईश्वर हमेशा के लिए निवास करना चाहते हैं? और अगर ये सच है कि वो स्वर्गीय मंदिर हम खुद हैं, तो ये हमारे अपने जीवन को, अपनी अहमियत को और हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इस पूरे नजरिए को कैसे बदल देता है?
ये वाकई एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर हम ही वो सच्चा तंबू बन रहे हैं तो फिर हमारे भीतर चल रहे सिस्टम अपग्रेड की सच में कोई सेवा ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।